आयु को आरव से अलग हुए लगभग 3.5 साल हो चुके थे। इन सालों में आयु कहाँ हो सकती थी, आरव को इस बारे में कोई खबर नहीं थी और ना ही वो इस बारे में जानना चाहता था। उस हादसे के बाद सबको लगा था कि आरव और आयु के बच्चे मर चुके हैं, लेकिन उसका बेटा आरव्य आज भी जिंदा था और आरव ने उसका नाम बदलकर आर्या कर दिया था। उसने उसका नाम आर्या इसलिए किया था क्योंकि हादसे में आर्या की मौत हो चुकी थी और वो अब उसी में दोनों को देखता था। आर्या की हरकतें काफी हद तक आयु से मिलती थीं, इसलिए आरव उससे दूर रहना चाहता था। संडे के दिन आर्या जबरदस्ती आरव को अपने साथ गार्डन एरिया में बने टेंट हाउस में लेकर गया, जहां वो उसके साथ डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा था। आरव के टेंट हाउस में आते ही आर्या बोला, ओ मिस्टर खुराना, आज आप फिर यहाँ पर आ गए। मैंने आपको कहा था कि आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन आप बहुत केयरलेस हैं। बताइए आज आपको क्या प्रॉब्लम है। आर्या की बातें सुनकर आरव ने आइज रोल की और अपने मन में बड़बड़ाकर कहा, कोई इतना नौटंकी कैसे कर सकता है। 2 मिनट पहले इसके चेहरे पर दुनिया भर की मायूसी छाई हुई थी, जैसे मैं इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, और इतनी देर में ये फिर से मुझे टॉर्चर करने पर आ गया। जरूर अयान ने ही इसे सिखाया होगा। आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आर्या उसको घूरते हुए बोला, आपको सीरियस होकर खेलना पड़ेगा। आरव ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके सामने आकर बैठ गया। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमेशा हेल्दी खाना खाने की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ होगा। कभी जंक भी खा लेना चाहिए, ना तो खुद खाते हैं और ना ही अपने आसपास वालों को खाने देते हैं, आर्या ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो आरव को देखकर बोला, चलिए अपना शर्ट ऊपर कीजिए, चेकअप करने के लिए कपड़े ऊपर करने पड़ते हैं। और ये किसने सिखाया तुम्हें, आरव ने चिढ़ते हुए पूछा। कुछ चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती हैं, आर्या पूरे एटीट्यूड से बोला। फिर वो स्टेथोस्कोप से आरव को चेक करने लगा। वो उसे चेक करते हुए बोला, वैसे मुझे चाचू की तरह नरुयो सर्जन बनना है। आर्या के न्यूरोसर्जन की बजाय नरुयो सर्जन बोलने पर आरव के फेस पर स्माइल आ गई। वो उसे करेक्ट करते हुए बोला, इट्स न्यूरोसर्जन बेबी। आरव को स्माइल करते देखा आर्या बोला, आपकी डिम्पल्स क्यूट हैं, हम दोनों की आंखें एक जैसी हैं, फिर स्माइल करते वक्त मेरे गालों पर डिम्पल क्यों नहीं पड़ते डैड। क्योंकि तुम्हारी स्माइल मेरे जैसी नहीं है, अब ज्यादा सवाल मत पूछो, आरव ने जवाब दिया। आरव आर्या की खुशी के लिए काफी देर तक उसके साथ खेलता रहा। लगभग 2 घंटे बाद आरव बोला, मैं थक गया हूँ बेबी, अब मुझे रेस्ट करना है और आप ही बाहर आओ, बाद में खेल लेना और डॉक्टर भी बन जाना। बोलते हुए आरव ने आर्या को गोद में उठा लिया। भले ही वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना करता हो, लेकिन आरव के जीने की वजह आर्या ही था। आरव ने देखा आर्या के माथे पर पसीना आया हुआ था, तो उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उसका मुंह साफ करने लगा। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसका चेहरा देखने में काफी हद तक आरव जैसा था, वही गहरी नीली आंखें और छोटी सी नाक, लेकिन उसकी स्माइल और लिप्स बिल्कुल आयु जैसे थे। आरव को अपनी तरफ यूं देखता पाकर आर्या बोला, क्या आप कल मेरे साथ स्कूल चलोगे? इस बार मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है, आई प्रॉमिस मैं किसी के साथ फाइट नहीं करूंगा। बदले में आपको मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाना होगा, ताकि बाकी लोग मुझे ये ना कहें कि मैं अपने मॉम डैड के साथ स्कूल नहीं आता। आरव ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। आरव आर्या को लेकर अंदर जा रहा था, तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से साक्षी और अयान उतरे, उन दोनों ने शादी कर ली थी। साक्षी और अयान साथ में अलग घर में रहते थे। उन्हें देखकर आरव वहीं पर रुक गया। साक्षी उसके पास आई और आर्या को अपनी गोद में लेकर बोली, तुमने मुझे मिस किया ना बेबी, आई एम सॉरी आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं चाची, आज डैड मेरे साथ हैं तो मैंने उनके साथ एडजस्ट कर लिया, आर्या मुस्कुराकर बोला और फिर साक्षी के गाल पर किस किया। आयु के जाने के बाद साक्षी ने ही उसका पूरा ध्यान रखा था। साक्षी आर्या को लेकर अंदर चली गई। अयान और आरव वहीं पर खड़े थे। अयान आरव को कुछ कहता उससे पहले आरव अंदर चला गया। वो जानता था कि जरूर अयान उससे आयु की ही बात करेगा। आर्यव के अंदर जाते ही अयान ने आइज रोल करके कहा, अजीब इंसान है, खुद से कुछ समझते नहीं और कोई और समझाने आता है तो इन्हें सुनना नहीं होता, वो भी न जाने कहाँ गायब हो गई है। यकीन नहीं होता कि आज भी वो उस क्रिमिनल के साथ रह रही होगी। सब भाई की गलती है, उन्होंने आयु को उसके पास छोड़ा था। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद अयान अंदर चला गया। वैसे भी आरव उसकी कहाँ सुनने वाला था। आरव अपने रूम में आया ही था कि तभी उसके पास माहिरा का कॉल आया। आरव ने कॉल रिसीव करके कहा, आज संडे है और मैं तुम्हारे साथ किसी मीटिंग में नहीं जाने वाला, मुझे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना है। कौन सा पूरा दिन मांग रही हूँ, सिर्फ 3 घंटे की बात है, प्लीज आ जाओ, होटल साज में मीटिंग हो रही है। मीटिंग रात में होगी तो तुम आज का दिन आर्या के साथ बिता सकते हो, माहिरा ने रिक्वेस्टिंग वे में कहा। आरव ने आने के लिए हामी भर दी थी और फिर कॉल कट कर दिया। आरव के हाँ कहते ही माहिरा के फेस पर इविल स्माइल थी। इस वक्त वो नाहर लूथरा के साथ होटल साज के ही एक कमरे में बैठी थी। आरव का कॉल कट करते ही नाहर लूथरा बोले, तुम क्यों आग से खेलती रहती हो बेबी,
अच्छे से पता है इस मीटिंग में फैज भी आने वाला है, वो भी अपनी वाइफ के साथ। तुम क्यों दोनों को आमने सामने लाना चाहती हो? जो किस्सा 3.5 साल पहले खत्म हो गया था उसे फिर से शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। वो पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाया है डैड, माहिरा ने सिर हिलाकर कहा। अगर आगे बढ़ पाता तो मुझसे शादी कर लेता। आज वो मीटिंग में फैज और अपनी वाइफ को साथ में देखेगा, तब उसे पता चलेगा कि उसकी वाइफ कितनी खुश है। फिर उसे अक्ल आएगी और वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देगा, चाहे उसे जलाने के लिए ही सही। इस प्रोजेक्ट के चलते वो फैज और उसकी वाइफ से बार बार मिलेगा। मिस्टर लूथरा ने उसकी बात पर हामी भरी। माहिरा ने जानबूझकर इस मीटिंग में आरफ को बुलाया था क्योंकि इतने सालों बाद कोई जॉइंट वेंचर होने जा रहा था जिसमें खान भी इन्वॉल्व हो रहा था। खान की तरफ से इस मीटिंग को हेड करने के लिए फैज और उसकी नई वाइफ आ रहे थे, जिसे उसने लगभग 3 साल पहले शादी की थी। शादी काफी प्राइवेट तरीके से हुई थी, इस वजह से कोई उसकी वाइफ से पहले नहीं मिला था और आज पहली बार सब उससे रूबरू होने जा रहे थे, इसलिए माफिया से जुड़े लोग एक्साइटेड थे। कोई और इस बात को जाने या ना जाने, लेकिन आरव और माहिरा अच्छे से जानते थे कि फैज की नई वाइफ कौन हो सकती है। बस यही जानते हुए माहिरा ने आरव को इस मीटिंग में बुलाने के लिए राजी कर लिया था।